जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जे गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नेतै गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। शिल श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं बहुत ही पवित्र दिन है। शिल श्रीवास पंडित के आविर्भाव का बहुत ही पवित्र दिन है, तो हम उनके विषय में सुनेंगे। पहले गौरी वैष्णव चरितामृत में जो लिखा गया है उससे हम कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद अन्यत्र से भी चर्चा करेंगे। पंच तत्व में पंचम तत्व हैं, पंच तत्व में पंचम तत्व हैं। कौन? श्रीवास पंडित, है ना। पंचम तत्व, प्रथम तत्व श्री कृष्ण चैतन्य, द्वितीय तत्व श्री नित्यानंद, तृतीय तत्व श्री अद्वैत, चतुर्थ तत्व गदाधर और पंचम तत्व श्रीवास। तो ये पंचम तत्व हैं श्रीवास पंडित। श्री चैतन्य के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। तो इनका आविर्भाव हुआ था 1453 में, और श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ था 1486 है, 1486 में, और इनका आविर्भाव हुआ 1453। तो कितने साल बड़े हैं? 33 साल बड़े। श्री चैतन्य से 33 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था। गौर पार्षद कुछ श्री गौर से पहले प्रकट हुए और कुछ बाद में प्रकट हुए। सब श्री गौरांग की आज्ञा से ही, जिसको जिस समय आज्ञा हुई उस समय प्रकट हुआ। तो श्री गौर की आज्ञा हुई थी कि मेरे जन्म से 33 साल पहले आप इस पृथ्वी में अवतीर्ण होइए। 33 साल पहले श्री अद्वैत आचार्य 52 साल पहले श्री चैतन्य से 52 साल पहले अवतीर्ण हुए। तो जब श्री चैतन्य का जन्म हुआ तो श्रीवास पंडित 33 वर्ष की अवस्था के थे और अद्वैत आचार्य 52 वर्ष की अवस्था के थे। तो ये नवद्वीप में निवास करते थे। श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना और प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करते थे। और इनके भाई थे श्री राम, श्री निधि, श्रीपति, तो अपने भाइयों का मार्गदर्शन करते थे इनके छोटे भाई। तो कुल मिला के 5 भाई थे। श्री नलिन का शरीर छूट चुका, उनकी पुत्री नारायणी थी जो श्रीवास के घर में रहती थी, और श्रीवास दूसरे भाई थे और उनसे छोटे श्री राम और श्रीपति और श्री निधि, कुल मिला के 5 भाई। लेकिन श्री चैतन्य की लीला में 4 भाइयों का ही नाम आता है। श्री नरेंद्र पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। अद्वैत आचार्य प्रभु के संग में इन्होंने भागवत अध्ययन किया और भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। इन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों और दंभी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णव धर्म स्थापित कर सकता था। तो श्री कृष्ण अवतार के लिए विशेष रूप से इन्होंने प्रार्थना की थी। अद्वैत आचार्य सबसे आगे, श्री कृष्ण का अवतार कराने में सबसे आगे अद्वैत आचार्य हैं, और उन्हीं के ही अनुयायी श्रीवास पंडित और अन्य भक्त लोग थे। श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी। तो मालिनी जो श्रीवास पंडित की पत्नी है, तो इनके बारे में मैंने कभी विचार किया था कि श्रीवास पंडित अगर नारद जी के अवतार हैं तो मालिनी फिर कैसे इनके साथ आ गई। श्रीवास नारद जी के अवतार हैं, नारद जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मवर्त पुराण में कुछ संकेत मिलता है कि जब ये उपबरहण नाम के गंधर्व थे तो जब ये युवा हुए तो बहुत सुंदर थे और इनमें बहुत गुण थे। तो 50 गंधर्व कन्याओं ने जब देखा तो उन्होंने इनको अपना पति बनाना चाहा। तो योग विधि के द्वारा उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और चित्ररथ नाम के गंधर्व की पुत्रियां हुईं। तो 50 जो ये पुत्रियां थी चित्ररथ की, उन्होंने उपब्रह्मण्य नाम के गंधर्व से अपने पिता की आज्ञा से विवाह किया। और जब ब्रह्मा जी की सभा में इनको बुलाया गया तो ये हरि का गुणगान कर रहे थे, लेकिन रंभा नाम की अप्सरा को देख करके इनका जो है वीर स्खलित हो गया। और ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने फिर इनको श्राप दिया कि तुम शूद्र योनि में जन्म लो। तो इन्होंने फिर अपना जब शरीर छोड़ा तो मालावती नाम की जो इनकी पत्नी थी उपब्रह्मण्य नाम के गंधर्व की, 50 पत्नियों में से मालावती नाम की जो पत्नी थी, उसने विशेष रूप से सब देवताओं से और भगवान विष्णु से आग्रह किया अपने पति को जीवित कराने के लिए। तो ऐसा कुछ संकेत मिलता है कि वही मालावती जो है गौर लीला में मालिनी है, श्रीवास की पत्नी है। तो कुछ इस तरह का संकेत मिलता है। तो श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी, वे एक धात्री के रूप में निमाई की सेवा करती थी। जब विश्वंभर प्रकट हुए सब भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूर्ण हो गए। गौरचंद्र मालिनी और श्रीवास से दूसरे माता पिता के समान प्रेम करते थे। श्रीवास आंगन निमाई के घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित है। तो श्रीवास आंगन जहाँ श्रीवास पंडित रहते थे, इनका घर विशेष रूप से संकीर्तन आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए अनुकूल था। इनका घर विशेष रूप से, क्योंकि बहुत विस्तृत घर था, श्रीवास का आंगन बहुत विस्तृत था, अभी भी है, आप जाएंगे देखेंगे बहुत विस्तृत है। तो बहुत बड़ी बाउंड्री श्रीवास आंगन की, बहुत बड़ी जो है बाउंड्री थी। और उसमें जो है श्री चैतन्य रात भर कीर्तन करते थे, तो कोई आ नहीं सकता था, बहुत ऊंची दीवार थी चारों तरफ से और द्वार बंद कर दिया जाता था। तो श्रीवास आंगन ये संकीर्तन आंदोलन का हेड ऑफिस, जो प्रारंभिक बीज के रूप में संकीर्तन आंदोलन, जो भी वृक्ष के रूप में फल फूल रहा है और पूरे विश्व में फल प्रदान कर रहा है। तो श्री चैतन्य के समय में जब ये आंदोलन बीज रूप में था, तो ये बीज कहाँ पर था? श्रीवास आंगन में था। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कमरे थे, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा थी और हरे भरे सघन कुंज और निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग और उनके प्रिय मित्र वहाँ कीर्तनों का आनंद उठाते और वृंदावन के रस का आस्वादन करते थे। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधावेश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था। इस घटना के बाद श्रीवास आंगन खोल भंग डंग के नाम से विख्यात हो गया। खोल का मतलब मृदंग और भंग का मतलब टूटना और डंग का मतलब स्थान, तो खोल भंग डंग भी इसको कहा जाता है श्रीवास आंगन को। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक कानून जारी कर दिया। तो काजी ने कुछ ईर्ष्यालु हिंदुओं के शिकायत करने पर ही काजी ने ये कानून चलाया, क्योंकि कुछ ईर्ष्यालु हिंदू ही थे जो कि श्री चैतन्य के इस कीर्तन से ईर्ष्या करते थे। और काजी को उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के विरुद्ध जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हमारे धर्म में जोर जोर से कीर्तन करने की कोई विधि नहीं बताई गई है और ये लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं। तो काजी ने जो है आकर के मृदंग तोड़ा और फिर कानून जारी कर दिया। क्या कि जो हाँ इस कानून का उल्लंघन करेंगे, यानी जोर जोर से कीर्तन करेंगे। अपने घर में कीर्तन कर सकते हो, लेकिन घर के बाहर आवाज नहीं निकलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घर में कीर्तन करे हैं, घर के बाहर आवाज निकली हैं, तो क्या होगा, धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना देंगे, जाति ले लेंगे। उस समय जाति लेना बड़ा आसान था, किसी भी हिंदू के सिर में मुसलमान अपने सुराही का पानी अगर छिड़क दे तो हिंदू समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हाँ, तो फिर समाज में तो रहना ही है, तो फिर मुसलमानों के समाज में उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति थी उस समय, तो सब लोग बहुत भयभीत हो गए। अब कीर्तन कैसे करें, जोर जोर से कीर्तन कैसे करें। संपत्ति भी जब्त कर लेगा, अगर आपने जोर जोर से कीर्तन की तो संपत्ति भी जब्त कर लेगा और जाति भी ले लेगा। हाँ, संपत्ति से, अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। यद्यपि अधिकांश नदी आवासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए, श्रीवास पंडित भी भयभीत थे। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान गौरांग सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। तो लीला बड़ी विस्तृत है चैतन्य भागवत में, कि श्रीवास के भयभीत होने, श्रीवास के भयभीत होने को देख करके श्री चैतन्य ने उनके भय को दूर करने का विचार किया, और फिर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया, अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और कहा कि तुम मेरे रूप के दर्शन करो और तुम्हारे घर में जितने भी दास दासी हैं सबको बुलाओ मेरे रूप के दर्शन करें, और तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ। और श्रीवास पंडित ने उनकी बड़ी अद्भुत स्तुति की। तो इस तरह से ये जो है सबसे पहला ये अवसर था जब श्री चैतन्य को अपना भगवत स्वरूप दिखाना पड़ा। और वो कारण क्या था, अपना भगवत स्वरूप दिखाने का कारण क्या था, कि श्रीवास को भय हो रहा था कि मुसलमान शासन, मुसलमानों का शासन चल रहा है और वे कुछ भी करें तो कोई बोलने वाला नहीं, मुसलमानों का शासन चल रहा है। तो सब तरह से आतंक फैल गया था, जितने भी भक्त थे वो आतंकित हो गए थे, और उसके ऊपर जो निंदक लोग थे हिंदुओं में ही जो ईर्ष्यालु थे, निंदक थे, तो वे और निंदा करते थे और हंसते थे और वो कहते थे हाँ हम तो पहले से कहते थे कि जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो, अब समझ आया। तो इस तरह से उनको और मौका मिला निंदा करने का, है ना। तो स्थिति में भगवान ने फिर अपना विष्णु रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया और सब भक्तों का भय दूर किया, है ना। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान गौरांग सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का घर गौरांग के संकीर्तन का मुख्य आलय था। तो यहाँ से ही जो है, मतलब वो एक बिंदु है संकीर्तन आंदोलन का, वो प्रारंभिक बिंदु है जहाँ संकीर्तन आंदोलन बीज रूप में प्रकट हुआ, है ना। अब पूरे संसार में फैल गया है आंदोलन, लेकिन इसका जो बीज है अंकुरित हुआ था कहाँ पर, श्रीवास आंगन में। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रात्रि कीर्तन और भगवान गौरांग की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटित हुईं। ब्राह्मणों के मुख्य विद्वानों श्रीवास पंडित और श्री अद्वैताचार्य ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। श्रीवास पंडित जो है ये इतने समर्पित थे, सब कुछ इन्होंने अपना जीवन और अपना अपने पत्नी और अपने संतान, अपने परिवार, सब कुछ जो है श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में समर्पित कर दिया, है ना। और एक ऐसी भी घटना हुई थी कि श्रीवास पंडित के घर में पुत्र का मरण हो गया, तो उस समय भी उन्होंने जरा भी अपना शोक नहीं प्रकट किया था। श्रीवास पंडित अपना शोक जरा भी प्रकट नहीं किया, है, और उनका चेहरा जो है मुस्कुराता ही रहा। दूसरे भक्तों ने जब सूचना दी श्री चैतन्य को, तो श्री चैतन्य भी जो है बहुत चकित हो गए कि मेरे लिए जो है इनको अपने पुत्र के मरण का भी कोई शोक नहीं हो रहा है मेरे कारण, है ना। तो ये जो है आश्चर्य है श्रीवास पंडित के चरित्र में। इन्होंने अपने तन मन और घर प्रियजन परिजन और सकल संपत्ति श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। ये किसी अन्य देवी अथवा देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, वरन इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। तो कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत यही है कि जब कोई गृहस्थ है अपने परिवार की सेवा करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो जब वो ये सोचता है कि ये मेरा परिवार है और मैं इसका भरण पोषण करता हूँ, तो ये भौतिक चेतना है। और जब कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है कि सब कृष्ण के सेवक हैं और मैं इनका सेवक हूँ, कृष्ण के सेवकों का सेवक हूँ, तो वो आध्यात्मिक चेतना है। तो श्रीवास पंडित की ऐसी चेतना थी कि अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, वरन इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, तो पंच तत्वों में से, मेरे सिर के ऊपर पंच तत्व हैं, तो पंच तत्व में तीन विष्णु तत्व हैं, तीन विष्णु तत्व हैं। सबसे पहले श्री चैतन्य, दूसरे नित्यानंद और तीसरे अद्वैताचार्य, तीन विष्णु तत्व हैं। और गदाधर चौथे शक्ति तत्व हैं, राधा रानी, है ना। और पांचवें श्रीवास नारद जी, ये जीव तत्व हैं, है ना। तो पंच तत्व में से तीन जीव तत्व हैं, एक शक्ति तत्व है और एक जीव तत्व है। तो जीव तत्व हैं, ये बद्ध जीवों के हितैषी हैं। गौरांग महाप्रभु के संग संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास पंडित लोक लोकांतर के प्रचारक हैं, ये जो है लोक लोकांतर के प्रचारक हैं। जैसे कोई इंटरनेशनल प्रीचर होता है, प्रभुपाद इंटरनेशनल प्रीचर है ना, तो सब देशों में प्रचार करते हैं। तो नारद जी क्या हैं, लोक लोकांतर के प्रचारक हैं, अलग अलग जो है लोकों में जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंटर प्लानेटरी प्रीचर, इंटर प्लानेटरी प्रीचर, इंटर प्लानेटरी प्रीचर श्रीवास पंडित हैं। और भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं, इनके समाधि 64 समाधि पीठ में है। गौर गुणोदेश दीपिका में लिखा है, श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि पर्वताख्यो मुनिवरो यासी नारद है प्रिया सराम पंडिता श्रीमान तत्कनिष्ठ है सहोदर। ये श्लोक संख्या 90 है गौर गणोदेश दीपिका में। तो ये बताया गया है श्रीवास पंडितो धीमान, धीमान का मतलब बुद्धिमान, श्रीवास पंडित बुद्धिमान। पहले नारद मुनि थे और पर्वत मुनि नाम के एक मुनि जो नारद के बहुत प्रिय थे, तो वे इनके छोटे भाई बने श्री राम पंडित। श्रीवास पंडित के बाद जो भाई थे वो श्री राम थे, तो वो पर्वत मुनि हैं। तो कई बार नारद मुनि और पर्वत मुनि की जोड़ी भी होती है, कहीं किसी स्थान में जाते हैं तो नारद मुनि पर्वत मुनि एक साथ जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी वर्णन आता है। तो इनकी जोड़ी है, तो नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए, तो पर्वत मुनि श्री राम पंडित के रूप में प्रकट हुए। सराम पंडिता श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर, छोटे सहोदर है श्री राम पंडित। श्रीवास पंडित से संबंधित बहुत लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में। एक लीला मैं आपको सुना रहा हूँ जिसमें श्रीवास पंडित का एक विशेष साहस देखा गया कि श्री चैतन्य से वे ही बात कर पाए और कोई भक्त श्री चैतन्य से बात नहीं कर पा रहा था। तो इसको सुनिए बड़े ध्यान से। श्री चैतन्य संन्यास ले चुके हैं और जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य और भी जितने भक्त हैं वे हर साल 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में आते हैं श्री चैतन्य का संग करने के लिए। तो सब भक्त श्री चैतन्य के साथ जगन्नाथपुरी में कीर्तन करते हैं। तो एक दिन अद्वैत प्रभु ने परम आनंद में उन्मत्त होकर सब भक्तों से कहा, हे भाइयों सुनो, एक गायकों का दल बनाओ जिसमें आज मुंह भरकर श्री चैतन्य के नाम गुण का गान करेंगे। अद्वैताचार्य बहुत साहसी हैं तो श्री चैतन्य की आज्ञा के विरुद्ध भी कभी कभी काम करते हैं। इनका प्रेम जो है इतना अधिक है कि श्री चैतन्य की आज्ञा का उल्लंघन भी कर देते हैं, लेकिन वो कारण क्या है, प्रेम के कारण। तो इन्होंने कहा कि आज जो है हम एक ऐसा दल बनाएंगे गायकों का जो कि मुंह भर करके श्री चैतन्य के नाम गुण का गान करें। क्योंकि श्री चैतन्य का जो है कठोर आदेश था कि मेरे नाम का कीर्तन नहीं करना है। जब तक भगवान का अवतार होता है तो अपने को छिपाते हैं और मनुष्य की लीला करते हैं, लेकिन अद्वैताचार्य का जो प्रेम है वो जो है इसको स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा चाहते हैं कि श्री चैतन्य का गुणगान अधिक से अधिक हो और सबको पता हो श्री चैतन्य परमेश्वर हैं, भगवान हैं। तो उन्होंने जो है सब भक्तों से कहा कि एक दल बनाओ, आज मुंह भर करके श्री चैतन्य का ही नाम गुणगान करेंगे, आज अन्य किसी अवतार का गुणगान नहीं करेंगे, आज किसी और अवतार का कीर्तन नहीं करेंगे, श्री चैतन्य अवतार का ही कीर्तन करेंगे। क्योंकि श्री चैतन्य सब अवतारों के अवतारी हैं, महाप्रभु ने संपूर्ण जगत का उद्धार कर दिया है और हम सब के लिए भी जिनका अवतार हुआ है, जिनकी कृपा से ही हम लोग सब जगह पूजित होते हैं और जिन्होंने संकीर्तन जैसा धन प्रकट किया है। तो शेर के साहस से कहता हूँ कि मैं तो नाचूंगा आज, मैं आज नाचूंगा। आज उनको भय नहीं हो रहा है, बोले आज मैं तो नाचूंगा। जे प्रभु करे ले सर्व जगत उद्धार, आमासा भला गिये प्रभु रे अवतार, सर्वत्र अमर जान प्रसादे पूजत, संकीर्तन हे न धन जे कैल विदित, नाचिया मे तो मर चैतन्य यस गाओ, सिंह है बोले पाछे मने मय पाओ। तुम लोग श्री चैतन्य का गुणगान करो और मन में भय मत करो। कह रहे हैं मैं तो हूँ, इसे डरने की जरूरत नहीं है, भय मत करो। प्रभु तो अपने को निरंतर छिपाते थे इसलिए कहीं भी क्रुद्ध ना हो, सबको डर था, सबको डर था श्री चैतन्य का गुणगान करने में। तथापि अद्वैत के वाक्य सबके लिए अलंग हैं। अद्वैताचार्य सबसे अधिक भगवान के प्रेमी हैं, सबसे निकट हैं और उनका आदेश कि गान गुणगान करना है। अतः श्री चैतन्य अवतार के चरित्रों को सब गान करने लगे, आनंद बेहबल होकर अद्वैत नाचने लगे और भक्त चारों ओर श्री चैतन्य का गुणगान करने लगे और नवीन अवतार के नाम यश को सुनकर सब वैष्णव प्रेम आनंद में विवश हो गए। प्रभु से अपन लुकाए न निरंतर, क्रुद्ध पाचे हाये न सभार एई डर, तथापि अद्वैत वाक्य अलंग सभार, गायते लागिला श्री चैतन्य अवतार। स्वयं अद्वैताचार्य श्री चैतन्य के यश का गीत रचना करने लगे। श्री अद्वैताचार्य ने गीत बनाया और भक्तों से बुलवा करके नाच रहे थे, लेकिन स्वयं नहीं गा रहे थे, सिखा दिया कि गाओ ये, और स्वयं नृत्य कर रहे हैं और भक्त लोग गा रहे हैं। अब वो जो गीत है उसका अर्थ ये है, हे करुणा सागर नारायण श्री चैतन्य प्रभु, दीन दुखियों के बंधु मेरे ऊपर दया करो। तो ये उनके मुख से निकला हुआ ये पद है। अपने अद्वैत चैतन्य रे गीत करी, बोलाई या नाचे प्रभु जगत निस्तारी, श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। अच्छा है, श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। बहुत अच्छा है, सरल है। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर, मेरे ऊपर दया करो। तो ये जो है पद था। अब वो सब भक्त लोग गा रहे हैं और ये जो है नृत्य कर रहे हैं। कौन नृत्य कर रहे हैं? अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे हैं। इसका कीर्तन करने से संपूर्ण संपत्ति बढ़ती है। कोई कहते श्री सचिनंदन की जय हो और कोई कहते श्री गौरचंद्र नारायण की जय हो, संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल की जय हो और भक्तों के प्यारे पाखंडियों के काल की जय हो। पाखंडियों के लिए क्या है ये? काल है, संहारक है। श्री अद्वैत सिंह बड़ा उद्दाम नृत्य कर रहे थे, शेर की तरह नाच रहे हैं, शेर की तरह नृत्य कर रहे हैं अद्वैताचार्य, और अन्य सभी एकमात्र श्री चैतन्य का गुणगान कर रहे हैं। सब गुणगान कर रहे हैं, अकेले नाच रहे हैं। कौन? अद्वैताचार्य नाच रहे हैं। अद्वैत रे सिंघेर, अद्वैत सिंघेर श्री मुखेर ए पद, इहार कीर्तन बाणे सकल संपद, के हो बोले जय जय श्री सचिनंदन, के हो बोले जय गौर चंद्र नारायण, जय संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल, जय भक्त जन प्रिय पाखंडी रे काल, नाचे ने अद्वैत सिंह पारम उद्दाम, सब एक श्री चैतन्य गुण कर्म नाम। श्री वैकुंठ नायक हरि ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होकर संकीर्तन विहार करते हैं। शरीर पुलक से शोभित होता है और सुख से लोटपोट होते हैं। हे भाइयों, देखो श्री चैतन्य का ऐसा अवतार हुआ है, सोने की जैसा श्री विग्रह शोभा दे रहा है और घुटनों पर्यंत लंबी मालाओं से सजे हुए सन्यासी रूप में अपने ही रस में बेहबल होकर कितने सुख से नृत्य करते हैं। करुणा सिंधु श्री गौर सुंदर की जय हो, श्री वृंदावन दास के महाराज की जय हो, नवदीप के इंद्र की जय हो। हे प्रभु, चरण कमल की छाया प्रदान करो। भक्तवृंद इन सब पदों का कीर्तन कर रहे थे। अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य के चरणों की भावना करके नृत्य कर रहे थे। नवीन अवतार के इसको सुनकर वैष्णव वृंद प्रसन्न होकर जय जय ध्वनि कर रहे थे। कीर्तन से कैसा अद्भुत आनंद हुआ, उसे केवल श्री नित्यानंद ही वर्णन कर सकते हैं। वो कीर्तन का जो आनंद हुआ उसका वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कौन कर सकते हैं? एकमात्र नित्यानंद। शेष जी हैं, हजार मुख वाले हैं, तो वही कर सकते हैं। उस कीर्तन की ध्वनि सुनकर सन्यासियों में शिरोमणि श्री गौर भी वहाँ आए, संकीर्तन की ध्वनि सुनकर के आए। श्री प्रभु को देखकर सभी भक्त अधिक उल्लास में गाने लगे, अद्वैत नाचने लगे। अब कोई डर नहीं रहे, उनका कठोर आदेश है कि मेरे नाम का कीर्तन नहीं करना है, भगवान भक्त के भाव में है, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी को डर नहीं लग रहा है क्योंकि अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे हैं, तो भक्त लोग भी बहुत प्रेम में जो है अब डर नहीं रहे। प्रेम आनंद में किसी ने प्रभु से भय नहीं किया, उल्टा उनके सामने श्री चैतन्य का गुणगान और जोर जोर से करना शुरू कर दिया। और प्रभु का जो बिहार है निरंतर दास भाव में होता है, मैं कृष्ण दास हूँ इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कहते हैं। ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनके सामने दास के अतिरिक्त ईश्वर कहकर के संबोधन करें। अगर वो जो है कठोरता से बोलते हैं नहीं तो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं। तथापि सब भक्त श्री अद्वैत के बल पर निर्मय होकर श्री चैतन्य हरि का यश गा रहे थे। आज जो है एक ऐसी घटना हुई कि किसी को डर नहीं हो रहा है और खूब कीर्तन कर रहे हैं। सन्यासियों के शिरोमणि प्रभु एक क्षण खड़े होकर अपनी स्थिति को सुनकर मानो लज्जा पाने लगे। वो तो आए थे कीर्तन सुनने के लिए और वो भी नाचते हैं, लेकिन कृष्ण के कीर्तन में नृत्य करना था उनको, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनका ही कीर्तन हो रहा है तो लज्जित हो गए हैं। अब वो कैसे सामने आए, नृत्य कैसे करेंगे हैं, तो लज्जित हो गए। किया द्वत है लैसे कीर्तन आनंद सभ्यता वर्णित जाने न नित्यानंद परम उद्दाम सुन कीर्तन रध्वनि श्री विजय आसिया हाईला न्यासी मणि प्रभु देखी भक्त सब आधे के उल्लासे गाये न अद्वैत नृत्य करे न हरि से। अपना कीर्तन सुनकर शिक्षा गुरु भगवान सबको शिक्षा देने के निमित्त अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान सबके शिक्षा गुरु हैं, तो शिक्षा देने के लिए अपने निवास स्थान में चले गए। क्या शिक्षा? कि किसी को अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए, और कभी अगर सुनने का अवसर मिलता है, तो लज्जित होना चाहिए। तो भगवान लज्जित हो रहे हैं, अपने निवास स्थान को चले गए, तथापि किसी के मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ। और भगवान आए चले भी गए, लेकिन किसी को भय उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि और भी विशेष रूप से श्री चैतन्य का गुणगान करने लगे। आनंद में किसी के शरीर में बाहरी ज्ञान नहीं है, सभी देख रहे हैं कि श्री प्रभु कीर्तन में विराजमान है। सब देख रहे हैं भगवान कीर्तन में विराजमान है, क्योंकि प्रेम से जहाँ कीर्तन करें मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त गान करते मैं तो वहाँ पर हूँ। लेकिन मनुष्य लीला में भगवान चले गए छोड़ करके, लेकिन सब भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं कीर्तन में, तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं कीर्तन से, तो भक्तों को जो है डर नहीं लग रहा है और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। फिर सभी देख रहे हैं कि श्री प्रभु कीर्तन में विराजमान है, सभी उन्मत्त होकर चैतन्य का यशो गान कर रहे हैं। पुण्यात्मा तो सुनकर सुख पा रहे हैं, किंतु पापी लोग दुख पा रहे हैं। जो पापी हैं, ईर्ष्यालु हैं, वो दुख पा रहे हैं कि श्री चैतन्य का गुणगान क्यों हो रहा है। श्री चैतन्य यश में जिसकी प्रीति नहीं है उसका ब्रह्मचर्य और संन्यास से क्या लाभ है। चाहे ब्रह्मचर्य हो चाहे संन्यास हो, श्री चैतन्य के गुणगान में प्रीति नहीं है तो क्या लाभ है ब्रह्मचर्य संन्यास से। इस प्रकार सभी भक्त परम आनंद सुख में हरिनाम संकीर्तन करते रहे। जो इन सब आनंद की लीलाओं को पढ़ेंगे व सुनेंगे, सुन रहे आप लोग, जो लोग आनंद के साथ इन लीलाओं को पढ़ेंगे सुनेंगे वे भी सब उन मंडलियों में जाकर मिल जाएंगे। श्री चैतन्य से प्रीत नाहय जाहार ब्रह्मचर्य सन्यासे बाकी कार्यताहार हे मत्य पार आनंद सुखे भक्तगण सर्व काल करे न श्री हरि संकीर्तन। ये सब आनंद क्रीड़ा पढ़ी ले सोनी ले ये सब गोष्ठी ते आसियाओ से हो मिले। सब प्रधान भक्त बिन नित्य गान के पश्चात श्री प्रभु के दर्शन करने को गए। और भगवान जो है कहाँ चले गए हैं? कोप भवन में चले गए हैं अपना कोप प्रकट करने के लिए। तो ये भी एक शिक्षा है। तो भगवान जो है अब सब भक्त लोग आए दर्शन करने के लिए आए। श्री चैतन्य अपना नाम और कीर्तन सुनकर सबको भय दिखाने के लिए आकर सो गए, भय दिखाने के लिए सो गए। गोविंद द्वारपाल ने श्री प्रभु को जताया, प्रभु द्वार पर सब वैष्णव आए हैं दर्शन दीजिए। तो दर्शन कैसे दें? वो तो भय दिखाना चाहते हैं तो दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो भगवान क्या बोले? सबको ले आओ। तो भगवान नहीं आए और भगवान गोविंद से कहते हैं सबको ले आओ। सबको ले आने को गोविंद को आगे देकर आप सोते रहे और किसी की ओर नहीं देखा। ये तरीका होता है ना अपना क्रोध दिखाने का, तो अपना क्रोध दिखा रहे हैं तो देखते नहीं किसी की और पड़े हैं सो रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि भगवान जो है प्रसन्न नहीं है, इस कार्य से प्रसन्न नहीं है। किसी की ओर नहीं देखा, सैया पड़े हैं। तब सब भक्त भयभीत होकर श्री गौरांग के चरणों का चिंतन करें, उन्हीं के चरणों से, उनसे भय प्राप्त हुए तो उन्हीं के चरणों से भय दूर होगा। चरण तो अभय चरण वही हैं, तो अगर वो भी भयभीत करते हैं, भगवान भी भयभीत करते हैं, तो उनके चरणों से ही भय दूर हो सकता है। तो सब भक्त उनके चरणों का चिंतन करने लगे। श्री भक्तवत्सल प्रभु एक क्षण में उठ बैठे और कहने लगे, हे वैष्णव सुनो, हे उदार श्रीवास पंडित, आज तुम सबने किस अवतार का कीर्तन किया है? तो स्पष्ट है कि किस अवतार का कीर्तन किया है, लेकिन भगवान जो है सुनना चाहते हैं, खुद नहीं बोलना चाहते, सुनना चाहते हैं आप लोगों ने किस अवतार का कीर्तन किया है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं अवतार नहीं हूँ, मैं तो एक जीव हूँ, एक मनुष्य हूँ, तो आप लोगों ने किस अवतार का कीर्तन किया है और किस नाम कीर्तन को छोड़ करके क्या गान किया है। आनंदे कहारो बाहे नाहे के शरीरे, सब देखे प्रभु आचे कीर्तन भी तेरे। गोविंदे रे आज्ञा हैला साभारे आनीते, शयने आछे ने न चाहे ने कारो भीते। भययुक्त हैया सकल भक्तगण, चिंतिते लागिला गौर चंद्रे रे चरण। मुझे अब समझाओ, भगवान क्या कह रहे हैं, आप भक्त लोग जो है मुझे समझाओ, आज आप लोगों ने किस अवतार का कीर्तन किया है, कृष्ण के नाम और गुणों को छोड़ करके आज आपने किस अवतार का कीर्तन किया है, मुझे समझाओ। भगवान कह रहे हैं अब किसकी हिम्मत उत्तर देने की, किसकी हिम्मत। आदित्याचार्य तो चले गए, जिन्होंने आग लगाई थी वो तो चले गए आग लगा करके, अब यहाँ फंसे हैं सब भक्तगण, अब कौन जवाब दे, अब कौन जवाब दे है। तो महावक्ता हैं कौन, श्रीवास पंडित, उन भक्तों में एकमात्र साहस करने वाले अब कौन थे, श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु जीवों में स्वतंत्र शक्ति तो कुछ है नहीं, जिसका ईश्वर ने आज कीर्तन और गान कराया उसे आज हमने गाया, आपसे स्पष्ट कह रहा हूं। जीवों की स्वतंत्र शक्ति है नहीं है? तो ईश्वर ने ही जो जिसका नाम कराया तो वो भी उसी प्रकार से जवाब दे रहे हैं, जैसे घुमा करके श्री चैतन्य भी पूछ रहे हैं है? तो सीधे नहीं पूछ रहे कि मेरे नाम का कीर्तन क्यों किया है ना, पूछ रहे हैं घुमा करके। तो श्रीवास पंडित ने घुमा करके जवाब दिया कि हमारे तो जो है हम दो जीव हैं, हमारी स्वतंत्र शक्ति है नहीं, ईश्वर ने जिसका नाम कीर्तन कराया उसका हमने नाम कीर्तन किया है, और यही स्पष्ट जवाब है। स्पष्ट जवाब नहीं है कहा, यही स्पष्ट जवाब यही है। श्रीवास पंडित ने कहा, श्री प्रभु ने कहा, आप सब तो पंडित हो, जो गुप्त रहना चाहे उसको क्यों प्रकट करते हो? क्या बोले, आप सब लोग विद्वान हैं, समझते हो सब कुछ, और जो गुप्त रहना चाहे था उसको क्यों प्रकट करते हो? तो सीधे नहीं बता रहे हैं ना, घुमा करके इशारा कर रहे हैं कि जो गुप्त रहना चाहता आप लोग जानते हो, लेकिन आप अपने से ज़्यादा लोगों में जो है आप प्रकाशित करना चाहते हो किसी बात को है? और जो गुप्त रहना चाहता है उसको फिर क्यों प्रकाशित कर रहे हैं, उसको क्यों प्रकट कर रहे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं, आप सब तो पंडित हो, जो गुप्त रहना चाहे उसे क्यों प्रकट करते हो? श्रीवास पंडित श्री प्रभु के वाक्य सुनकर हाथ से सूर्य को ढक करके हंसने लगे। श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, क्या, सूर्य को जो है हाथ से ऐसे करके ढका और हंसने लगे। प्रभु ने कहा, हाथ दिखाकर क्या संकेत करते हो, हाथ दिखाकर क्या संकेत करते हो, अपने संकेत को स्पष्ट करके कहो। छाने के ओठीला प्रभु श्री भक्त वत्सल, बालिते लागिला आए वैष्णव सकल। आए आए श्री निवास पंडित ओदार, आज तुम सब के करीला अवतार। छाणिया कृष्णेर नाम कृष्णेर कीर्तन, की गाईला आमरे तब बोझाई एखन। महावक्ता श्री निवास बोले न गोसाई, जीवेर स्वतंत्र शक्ति मोले की छुनाई। जेन कराये न जेन बोलाये न ईश्वरे, से आज बालीलां कहिले तुम्हारे। प्रभु बोले तुम ईसा भैया पंडित लुकाए जे तारे के ने कह रहा विदित। सुनिया प्रभु रे वाक्य पंडित श्री वासे हस्ते सूर्य आछा दिया मने मने हासे। प्रभु बोले कि संकेत कैला हस्ते दिया तुम्हारे संकेत तुम ही कहता भांगिया। तो श्रीवास ने क्या कहा? श्रीवास ने कहा मैंने हाथ से सूर्य ढका था, आपसे स्पष्ट करके यही कहता हूं मैंने हाथ से सूर्य ढका था। उत्तर मिल गया ना? भगवान क्या बोले, जो छिपना चाहता है, जो गुप्त रहना चाहता है, उसको क्यों प्रकट करते हो? तो श्रीवास ने क्या कहा, उत्तर दिया कि मैं सूर्य को ढक रहा हूं। तो सूर्य को क्या ढक सकता हूं? हाथ से, है ना। श्रीवास ने कहा मैंने हाथ से सूर्य ढका था, आपसे स्पष्ट करके यही कहता हूं। क्या कभी हाथ से सूर्य आच्छादित हो सकता है? प्रभु उसी प्रकार आपको गुप्त रखना भी असंभव है, हमारे लिए संभव नहीं आपको छिपा करके रखना। श्रीवास पंडित ने क्या कहा, भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में मैं अपने को छिपाना चाहता हूं, तो आप लोग मुझे क्यों प्रकट करते हो? तो श्रीवास पंडित ने क्या कहा कि हमारी शक्ति नहीं आपको छिपाने की, सूर्य को क्या कोई छिपा सकता है? जब सूर्य प्रकट होगा तो कौन छिपा सकता है सूर्य को, है? तो आपको गुप्त रखना असंभव है। सूर्य यदि हाथ से छिप भी जाए तथापि आप कभी नहीं छिप सकते, सूर्य को भी आप छिपा नहीं सकते यहाँ से, है ना। लेकिन अगर मान लो छिप जाए हाथ से तो भी आप छिप नहीं सकते। जब क्षीर सागर में आप नहीं छिप सके, जब क्षीर सागर में भी आप नहीं छिप सके तो पृथ्वी पर कैसे छिप सकेंगे? पृथ्वी तो बहुत छोटी है। क्षीर सागर 16 लाख योजन का है और ये पृथ्वी जम्बूद्वीप जो है 1 लाख योजन का है, तो क्षीर सागर 16 लाख योजन का है। तो क्षीर सागर में आप नहीं छिप सके तो इस पृथ्वी तो बहुत छोटी है, इस पृथ्वी में आप कैसे छिपेंगे? हिमाचल पर्वत से सेतु बंध पर्यंत सब पृथ्वी को व्याप्त करके आपका निर्मल यश सब दिशाओं में भर गया है, भर गया। आपके कीर्तन से सब ब्रह्मांड पूर्ण हो गया है। आप कितने जनों को क्या क्या दंड देंगे? आप कितना दंड दोगे? कितने कितने लोगों को आप दंड देंगे? आपका यशोगान कहां से कहां तक फैल गया है? हिमाचल पर्वत से सेतु बंध पर्यंत आपका निर्मल यश फैल गया है। तो कितने कितने लोगों को आप दंड दोगे? श्रीवास पंडित कह रहे हैं हस्ते की कखा न पारी सूर्य आछा दीते से मत असंभव तो माँ लोकाई थे। सूर्य यदि हस्ते वहा ये न आछा देते तब तुम्हें लोकाई थे नारे कदाचित तुम्हें योगी लोकाई या पृथ्वी भी तारे जे नारे ले लोकाई थे छीरो दे सागरे। भगवान सदा भक्तों की जय कराते हैं इतना कह रहे थे। उस समय द्वार पर अद्भुत बात हुई, वो ये कि ना जाने कहां से हजारों लोग जगन्नाथ दर्शन करके श्री गौर चंद्र के दर्शनों के लिए द्वार पर आ पहुंचे। तो भगवान ने ही जो है श्रीवास पंडित को विजय दिलाने के लिए और स्वयं हारने के लिए ये संयोग बनाया कि श्रीवास पंडित के कथन को पुष्ट करने के लिए क्या घटना हुई, हजारों लोग जो है श्री गौरांग के दर्शन करने के लिए आ गए, द्वार में वहीं पर आ गए और कीर्तन कर रहे हैं, गौरांग का ही कीर्तन कर रहे हैं। कोई त्रिपुरा से, कोई चट्टग्राम से, कोई श्रीहट से, कोई पूर्व बंगाल से आए थे और श्री चैतन्य अवतार का यश वर्णन करके हजारों लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान ही कीर्तन का विरोध कर रहे हैं लेकिन भक्तों को भी जो है विजय दिलाने के लिए ऐसी घटना हुई कि श्रीवास पंडित ने जो कहा कि आपका यश तो पूरे भारत में फैल गया है तो कहाँ कहाँ से लोग आए और उस समय चैतन्य का गुणगान कर रहे हैं। हाँ ब्रह्मांड पूर्ण हैला तो मारे कीर्तने कत जन दंड तो मे करी वाके माने सर्वकाल भक्त जय बढ़ाए ईश्वरे हे निकाले अद्भुत हैले आसी द्वारे सहस्र सहस्र जन न जाने कोथार जगन्नाथ देखी आयल प्रभु देखी वार केहो व त्रिपुरा केहो चाटी ग्राम बासी श्रीहट्टी अलोक केहो केहो बंग देसी सहस्र सहस्र लोक करे न कीर्तन श्री चैतन्य अवतार करी या वर्णन अब चैतन्य अवतार का वर्णन कर रहे हैं, हजार हजार लोग कर रहे हैं, तो अभी तो थोड़े से भक्त कर रहे थे, अभी हजारों हजारों भक्त कर रहे हैं, चैतन्य अवतार का वर्णन कर रहे हैं, और कैसे वर्णन कर रहे हैं, बनमाली श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जय हो, अपने भक्तिरस द्वारा कुतूहल करने वाले प्रभु की जय हो जय हो, परम सन्यासी रूप धारण करने वाले श्री प्रभु की जय हो जय हो, संकीर्तन रसिक मुरारी की जय हो जय हो, वैकुंठ बिहारी द्विजराज की जय हो जय हो, जगत का कल्याण करने वाले प्रभु की जय हो श्री सचिनंदन कृष्ण चैतन्य की जय हो। इस प्रकार असंख्य लोग गान और नृत्य कर रहे थे। श्रीवास ने कहा प्रभु आप क्या करोगे हमारे ऊपर आप कुपित होते हैं, अभी तो देखो कितना आपका गुणगान हो रहा है, अब क्या करोगे, देखो पूरा संसार आपके यश गा रहा है, अब कहाँ छिपोगे, अब कहाँ छिपोगे, इन सब लोगों को क्या मैंने सिखाया है। श्रीवास पंडित कह रहे हैं क्या मैंने सिखाया इन लोगों को, प्रभु पूरा संसार इसी प्रकार गान करता है, हे स्वामी आप अव्यक्त होकर भी करुणा करके जीवों के आगे प्रकट हुए हैं, आप स्वयं ही गुप्त हो जाते हैं तो कोई आपको प्रकाशित नहीं कर सकता, और जब आप स्वयं प्रकाशित होते हैं जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं तो वही जन आपको जान पाते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य बनमाली, जय जय निज भक्ति रस कुतूहली, जय जय परम सन्यासी रूप धारी, जय जय संकीर्तन रस के मुरारी, जय जय द्विजराज वैकुंठ विहारी, जय 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 जगतेर उपकारी, जय कृष्ण चैतन्य श्री सचिर नंदन, हे मत गाय नाच सत संख्य जन। श्रीवास से बोले ने प्रभु ए बेकी करीवा, सकल संसार गाय को था लोकाईवा, मोई ने सिखाई या छो ए सब लोके रे, ए मत गाय प्रभु सकल संसार। तो ये बात किसने कही, श्रीवास पंडित ने कही ये बात, ये क्या मैंने सिखाया, आपका तो यश फैल रहा है, हमें आप चुप करा सकते हो, लेकिन किस किस को चुप कराओगे, तो पूरी दुनिया में आपका गुणगान हो रहा है, किस किस को चुप कराओगे, हैं? तो भगवान जो है क्या बोले, देखो भगवान का गुण कैसा, भगवान का गुण है, श्री प्रभु ने कहा तुम अपनी शक्ति के द्वारा लोगों के मुख से कहलवा रहे हो, भगवान कह रहे हैं श्रीवास पंडित, तुम अपनी शक्ति के द्वारा लोगों के मुख से कहलवा रहे हो, मैंने यह समझ लिया है। श्रीवास पंडित सुनो मैं तुमसे हार गया हरि बोल। श्रीवास पंडित बोले, भगवान कहते हैं श्रीवास पंडित सुनो मैं तुमसे हार गया, मैं तुमसे हार गया और समझ लिया कि तुम में सब शक्ति है, प्रभु सदा ही भक्त की विजय कराते हैं, भगवान जो है भक्त से विरोध भी करते हैं तो फिर स्वयं ही हारते भी हैं, उस विरोध में स्वयं ही हारते हैं और भक्त को ही विजय देते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं हार गया, है ना, अजित हैं भगवान, कोई जीत नहीं सकता अपनी शक्ति से, इन भक्ति के बल पर भगवान को जीता जाता है, भक्ति के द्वारा भगवान को जो जीता जाता है ना, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हार गया, विजय पत्र लिख करके दे दिया श्रीवास पंडित को, सर्टिफिकेट दे दिया। वेद और भागवत भी यही कहते हैं, वेद भागवत भी यही कहते हैं क्या, कि भक्ति से श्री चैतन्य हार जाते हैं, भक्ति के आगे हार जाते हैं, वेद और भागवत भी यही कहते हैं। श्री गौर ने हंस करके सब वैष्णवों को विदा किया, हंस करके विदा किया, तब सब वैष्णव अपने अपने निवास स्थान को चल दिए, भक्तवत्सल श्री चैतन्य देव ऐसे हैं सभी उनको श्री कृष्ण करके गान करते हैं। प्रभु बोले तुम्हें प्रभु बोले तो मैंने जय शक्ति प्रकाशिया बोला हलो के रे मुख्य जानी लांग इहा तुम्हारे हारे ले मोई सुना हा पंडित जानी लांग तुम्हें सर्व शक्ति समन्वित सर्व काल प्रभु बढ़ा ये न भक्त जय ये ताने स्वभाव वेदे भागवते कहे हास्य मुख्य सब वैष्णव वीरे गौरे राय विदाए दे ले सब चलीला बसाए। सब वैष्णव अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। भक्त वत्सल श्री चैतन्य देव ऐसे हैं सभी उनको श्री कृष्ण करके गान करते हैं। श्री नित्यानंद श्री अद्वैत आदि जितने प्रधान भक्त थे वे सब कहते थे कि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान हैं। उन सब प्रभु के वचनों को उल्लंघन करके जो अन्य किसी को श्री कृष्ण कहते हैं वे अभागे हैं। किसी और को जो कृष्ण कहते हैं वो अभागे हैं। बहुत अभी अवतार चल रहे हैं, बहुत लोग जो है किसी को अवतार बता रहे हैं तो ये सब अभागे लोग हैं। श्री चैतन्य के सेवा किसी अन्य व्यक्ति को अवतार बताते हैं, अभागे हैं। शेष सैया पर शयन कौन करते हैं? श्री चैतन्य ही करते हैं। लक्ष्मी के पति कौन है? श्री चैतन्य है। श्रीवास श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले कौस्तुमणि विभूषण और गरुड़ वाहन ये सब चिन्ह श्री कृष्ण के हैं, निश्चय पूर्वक जान लो। और गंगा जी अन्य किसी के चरण कमल से उत्पन्न नहीं होती हैं। किसी को ये नहीं बोलना चाहिए आपके चरणों से गंगा निकली हैं, श्री चैतन्य को ही कहा जा सकता है। और किसी के चरणों से गंगा नहीं निकलती हैं, श्री चैतन्य के बिना ये सब बातें दूसरे में संभव नहीं है। इसको वेद शास्त्र और सब वैष्णव कहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों के वाक्यों को जो आदर से ग्रहण करता है उसकी सब जगह विजय होती है। नित्यानंद अत्वैतादि जाते गए प्रधान सभी बोले श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। ये सकल ईश्वरे रे वचन लंघिया अन्य रे जे बोले कृष्ण से ही अभागिया। शेष साई लक्ष्मीकांत श्रीवत्स लांछन कौस्तुभ भूषण आर गरुड़ वहन। अब एक घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौर कथा में मैंने ये कथा सुनाई थी तो 2014 की गौर कथा में, जो भी हो 2014 की गौर कथा में मैंने ये कथा सुनाई थी तो वो रिकॉर्डिंग हुई थी। और वो रिकॉर्डिंग जब 19 अक्टूबर को जब मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था तो वो रिकॉर्डिंग जो है मेरी गाड़ी में मशीन से निकल रही थी। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था तो ICU में मुझे भेज दिया गया था। तो ये मेरे साथ में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु थे और अशित गोविंद प्रभु थे और प्रदीप ड्राइवर था। तो तीनों जो है उस समय उनको अवकाश मिला क्योंकि मैं ICU में आ गया था तो इनको अवकाश मिला प्रसाद ग्रहण करने का। तो गाड़ी में बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और गाड़ी में जो मशीन लगी थी तो उसमें ये गौर कथा निकल रही थी। अब उस समय जब धूप आ रही थी खिड़की से तो प्रदीप ने क्या किया कि धूप को रोकने के लिए वो जो क्या बोलते हैं उसको जाली लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। और जिस समय प्रदीप ने जाली में जाली लगाने के लिए हाथ बढ़ाया उसी समय ये शब्द निकले। क्या शब्द निकले कि हाथ फैला करके क्या संकेत करते हो? तो श्रीवास बोले कि मैं सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा तो ऐसे बहुत से घटना जो बनते हैं जो कि बहुत आश्चर्य होता है ना। और ये सब जो है मतलब हम लोगों को दिखाई देते हैं, भगवान जो है कथा के द्वारा जो है ऐसी घटनाओं का योग बनाते हैं कि जिस समय जैसी शब्द निकलते हैं कथा के वैसी घटना होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये लीला जो है श्रीवास पंडित की जो लीला है 19 अक्टूबर के दिन जब मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था उस दिन हुई थी ये लीला। श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।